चैतन्य भागवत में कहा गया है, ऊंच करी लैले सतगुण पुण्य है। अगर भगवान के गुणों को ऊंच स्वर से बोलते हैं नाम को, तो सौ गुना फल मिलता है। दोस्त ना कहे शास्त्रीय गुण से वर्णन, कहीं भी इसके दोष का वर्णन नहीं है। ऊंच स्वर से कीर्तन करने पर केवल गुण कहा गया, दोष नहीं। ऊंचरी सतम गुणम भयेत, ऊंच स्वर से उच्चारण करने पर सौ गुना लाभ होता है। क्यों लाभ होता है? हरिदास ठाकुर से महाप्रभु चर्चा करते हैं कि नाम कीर्तन का इतना महत्व समझते हो, जब करते हो, लेकिन इससे दूसरों का लाभ क्या होगा? पशु पक्षी पेड़ पौधा, इन लोगों का उद्धार कैसे होगा? नाम कीर्तन की महिमा बताते हुए हरिदास ठाकुर कहते हैं कि प्रभु, जब आप उच्च स्वर से नृत्य करते हुए कीर्तन करते हैं तो इससे सबका उद्धार हो जाएगा, क्योंकि पशु पक्षी कीट आदि बलि पे न पारे, सुनी ले से हरिनाम तारा सब तरे। हरिनाम को सुनने से उनका उद्धार हो जाता है। जपी ले से श्री कृष्ण नाम आपन से तरे, जप करने से तो जपने वाला तरता है। उच्च संकीर्तन पर उपकार करे, उच्च संकीर्तन करने से उपकार होता है, पर उपकार। अतएव उच्च करी कीर्तन करी ले, सत गुण फल है सर्व शास्त्र बले। जप तो हरिनामानी स्थाने सतगुणाधिक, आप मानस से पुनाप्यू चई जपन सोते पुनातिच। भगवान के नाम को जो व्यक्ति जप करता है केवल अपने सुनने भर, तो उसका लाभ होता है। लेकिन अगर उच्च स्वर से करता है तो उच्चारण करने वाला का लाभ होता है और सुनने वाला का भी। इस श्लोक में नाम संकीर्तन के महान प्रभावों का वर्णन किया गया। नाम संकीर्तन चित्त रूपी दर्पण का मार्जन करता है और संसार दावा को नष्ट करता है। देखिए, चैतन्य महाप्रभु चित्त का तुलना दर्पण से करते हैं। वास्तव में श्री चैतन्य महाप्रभु परम करुण है, जीवों के संबंध अविधेय और प्रयोजन आदि तत्वों को सम्यक रूप से बोध कराने के लिए शिक्षा स्तर का प्रवचन किए हैं, जिसमें श्री कृष्ण के स्वरूप भूत या कृष्ण संकीर्तन की महिमा का गान किया है। कृष्ण में और कृष्ण के नाम में भेद नहीं है, नाम नामी अभेद है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन की महिमा गा करके कृष्ण संबंध को बतलाना चाहते हैं। कृष्ण संबंध तत्व सभी जीवों का एकमात्र आश्रय संबंध श्री कृष्ण से है। हमारे निकटतम बंधु श्री कृष्ण है, सुहृदम सर्वभूतानाम, सभी जीवों के संबंधी हैं। भले हम अज्ञान बस इस बात को न समझें, लेकिन तत्वतः विचार करने पर यही फाइनल निष्कर्ष निकलता है कि सबसे निकटतम बंधु भगवान है। माता के गर्भ से लेकर जीवन पर्यंत, जन्म जन्मांतर, जहाँ जिस अवस्था में हम रहते हैं, भगवान संवाद करते हैं। लेकिन इस संबंध को किस साधन से प्राप्त किया जाए, फिर से उस संबंध से युक्त हुआ जाए, तो उसी साधन को विधेय कहते हैं। जिस उपाय से हम संबंध को जोड़ सकते हैं वह है अभिधेय भक्ति। लेकिन वैदिक प्रमाण है, शास्त्रों में कहा गया कि यह भक्ति सुदुर्लभा है, आसान नहीं है, कठिन है। इसको प्राप्त करने के लिए केवल परमार्थिक श्रद्धा की आवश्यकता है। तो परमार्थिक श्रद्धा के दो विधा है, दो प्रकार है। एक शास्त्रों के शासन युक्त वचनों से प्रेरित होकर भक्ति मार्ग में प्रवेश कराने वाली, जिसको शास्त्रार्था और धारणामयी श्रद्धा कहते हैं। शास्त्र के आदेश से हमको श्रद्धा होती है, शास्त्र हमें निर्देश करता है, मनमना भव मद भक्तो मद्यादि माम नमस्कुरु, सौरम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, भगवान के विषय में सुनना चाहिए, बोलना चाहिए। तो शास्त्र हमें प्रेरित कर रहा है, शास्त्र के वचन पर विश्वास करने की संभावना को श्रद्धा कहते हैं। जब हम शास्त्र वचन में विश्वास करने लगते हैं और उसके अनुसार भक्ति मार्ग में हमारी प्रवृत्ति होती है, तो इसको कहते हैं शास्त्रार्था व धारणा मई श्रद्धा, शास्त्र से ये धारणा प्राप्त हुई। और एक है भगवत लीला माधुर्य के श्रवण आदि से किसी विशेष सौभाग्यवश उत्पन्न लोभ हेतु भक्ति में प्रवृत्ति, भगवान लीला माधुर्य लोभमय श्रद्धा, भगवान के माधुरी को सुनने का लोभ निरंतर इसका अनुभव हमारे पास है। लोभ छुटता नहीं, काम क्रोध लोभ ये जीव को बहुत तंग करता है। विविध प्रकार के विषयों की कामना चाह ये काम है, और उस काम की प्राप्ति की तत्परता प्रबल हो जाना उसको लोभ कहते हैं। अब उसके बिना रहा न जाए, चाहा चाहते हैं वो मुझको मिलना चाहिए और लोभ है, और चाहिए। विधायक हो गए तो अभी मिनिस्टर बनना बाकी है, मिनिस्टर हो गए तो अभी चीफ मिनिस्टर बनना है, बढ़ता जाता है। अगर नहीं प्राप्त हुआ तो क्रोध, किसके कारण हम चुनाव हार गए, इस तरह से क्रोध होता है। काम क्रोध लोभ ये तीनों जीव को बहुत तंग करता है। तो जब भगवान की लीला माधुरी को सुनने की स्वाभाविकी लोभ हो जाए तो उसको कहते हैं भगवान लीला माधुर्य लोभमय श्रद्धा। तो इस श्रद्धा से व्यक्ति प्रेरित होता है। श्रद्धा शब्द विश्वास का ही सुदृढ़ निश्चय, जब सिद्धांत के प्रति निश्चयता हो जाए उसको श्रद्धा कहते हैं। हाँ ये करना चाहिए। तो शास्त्र के वाक्यों में भगवान के गुणों के प्रति लोभ ये सब हमको भजन के लिए प्रेरित करने के साधन है। हमारी प्रेरणा स्रोत है। किसी भक्त के मुख से कुछ सुन लिए शास्त्र की बात तो श्रद्धा हो गई, चलो सुनना चाहिए। और सुनते सुनते होता क्या है कि लोभ उत्पन्न हो जाता है। कोई इंजीनियर के विषय में सुनता है तो इंजीनियर बनना चाहता है, लोभ हो जाता है हम भी बन जाए, IAS बन जाए, डॉक्टर बन जाए। तो लोभ जब उत्पन्न होता है तब हम गुरु चरण आश्रय लेते हैं, किसी मार्ग निर्देशक की आवश्यकता होती है, उनके चरण में आश्रित होते हैं, जिज्ञासा करते हैं और इसके बाद फिर दीक्षा लेते हैं। तो दीक्षा लेकर दीक्षा के द्वारा बताया जाता है, गुरुमुख से सुनते हैं कि शुद्ध सत्संग करना चाहिए, परमहंस वृत्ति में रहना चाहिए। साधु को परमहंस कहा गया। परमहंस का अर्थ ये संसार गुण दोष से भरा हुआ है, लेकिन किसी के दोषों में वो लिप्त नहीं होते, केवल गुण ही ग्रहण करते हैं। तो ऐसे परमहंस साधुओं के साथ तंग करने का गुरु का निर्देश होता है कि केवल अच्छाई को ही ग्रहण करे, बुराई में न फंसे। बुरा अच्छा से संसार भरा हुआ है, ज्यादा बुराई ही है। एक जगह कलकत्ता में एक कपड़े की दुकान में एक लिखा हुआ बंगला का कोई पद था, उसको मैं पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। याद तो नहीं है, उसका भाव याद है। उसमें लिखा गया था, नौका जल में रहे कोई हानि नहीं। स्वाभाविक है नौका जल में रहना चाहिए, नौका के भीतर जल नहीं होना चाहिए। नौका जल मध्य था कोई खती नहीं, ऐसे कुछ था। सही रकम ठीक उसी प्रकार इस संसार में साधक रहे स्वाभाविक है, लेकिन साधक के भीतर संसार नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार शुद्ध सत्संग जब करते हैं तब हमारा जो माया है अविद्या है उसका दमन होता है, चित्त की शुद्धि होती है। तो सत्संग के माध्यम से हमको भगवत तत्व का बोध होता है। तो भक्ति के अनेक विधाओं का वर्णन है, नौधा भक्ति, षड्विधा भक्ति, 64 प्रकार की भक्ति, लेकिन तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन क्यों कहा गया, क्योंकि नाम संकीर्तन का बहुत बड़ा प्रभाव है चित्त शोधन के लिए। अगर कोई दर पर सब धूल जमा हो, बालू मैल पड़ गया हो, कालिख पड़ गया हो, तो बस गाड़ी से पोंछ कर उसके मैल को दूर करके तब फेस को देखते हैं। मान लीजिए बहुत दिनों से दर पर रखा हुआ है, उसको धूल पड़ गया तो एकदम निकट की वस्तु भी प्रतिबिंबित नहीं हो पाता है, तब उसको पोंछते हैं, पोंछ कर साफ करके तब देखते हैं। जीव का चित रूपी दर्पण मैल से ढक गया है, चित के अंदर क्या मन है, तो चित के अंदर की गंदगी है भगवत विमुखता और कृष्णेतर माइक विषयों की लालसा, माइक विषयों की कामना। जीव के अंदर जो भोगों की कामना है, विविध भोगों की कामना, यही हमारे चित की सबसे बड़ी गंदगी है। यह है अज्ञान अविद्या, यही अविद्या रूपी मल से चित मलिन हो गया है और इसमें निकटतम वस्तु भी प्रतिबिंबित नहीं हो रहा है। अगर तात्विक रूप से विचार किया जाए तो चित के सबसे निकटतम श्री भगवान है, क्योंकि वो सर्वत्र है। जब सर्वत्र है, कण कण में है, हर जगह हर स्थान में हर वस्तु के अंदर है, तो इसका मतलब कि चित के सबसे निकटतम वही है। लेकिन दुर्भाग्य है कि चित गंदा है, उनका प्रतिबिंब चित पर बन नहीं रहा है। दर्पण की एक विशेषता है कि जो निकट रहेगा वो ज्यादा प्रतिबिंबित होगा, जो वस्तु दूर चला जाएगा वो कम होते होते ओझल भी हो सकता है, लेकिन जो जितना निकट रहेगा उतना ज्यादा प्रतिबिंबित होगा। तो चित में प्रतिबिंबित होना चाहिए भगवान को। महाप्रभु कहते हैं कि भगवान प्रतिबिंबित होंगे लेकिन दर्पण गंदा रहेगा तो नहीं होगा, दर्पण को साफ करना पड़ेगा। तो संकीर्तन रूपी वक्त व्याधि के द्वारा बार बार पोंछ करके साफ किया जा सकता है, तब स्वच्छ होगा। यही है चेतो दर्पण मार्जनम, चित रूपी दर्पण का मार्जन। बहुत जन्म जन्मांतर से जिन विषयों को हम बार बार देखते और सुनते हैं, उसी देखने सुनने का जो कलेक्शन है उसी को संस्कार कहते हैं। संस्कार चित्त में जम जाता है, जो हमारा उसी को स्वरूप कहते हैं। जो हमारा ओरिजिनल संस्कार है, स्वरूप है, वो दूषित हो गया और बाद में फालतू चीज इसमें आ गया और अलग अलग संस्कार, अलग अलग स्वभाव, नेचर हो जाता है। नेचर का निर्माण इसी तरह होता है, हमारे स्वभाव का। बार बार देखने सुनने से बस हमारे संस्कार मन में, बुद्धि में, चित्त के चार विधा है इसके अंदर, अंतःकरण, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त। तो सबको मिलाकर चित्त कह देते हैं, हृदय कहते हैं। तो इसमें विविध वस्तुओं का प्रभाव हो गया है और सबसे निकटतम वस्तु नहीं दिखती। वास्तव में श्री कृष्ण, उनका नाम, उनका गुण, उनका रूप, उनका धाम, ये सब सर्वज्ञ, अनंत और विभु है। जैसे श्री भगवान विभु है, विभु का मतलब सर्वव्यापक, या विष्णु उनको कहते हैं। विभु का ही दूसरा पर्यायवाची शब्द है विष्णु, जो सब जगह है, या सर्वज्ञ उनको कहते हैं, अनंत कहते हैं। तो श्री भगवान सर्वज्ञ है, विभु है, अनंत है, वैसे ही उनका नाम, उनका गुण, उनका रूप, उनकी लीला, उनका धाम, ये भी विभु है, सर्वव्यापक है। तो सर्वव्यापक कृष्ण और कृष्ण के नाम धाम सर्वत्र विराजित है, इसलिए श्री कृष्ण और कृष्ण का धाम सर्वदा चित्त के अंदर भी है, लेकिन जीव का चित्त रूपी दर्पण मलिन है इसलिए दिखता नहीं। देखिए, एक स्वच्छ चित्त का प्रमाण और एक दूषित चित्त का प्रमाण भागवत से आपको बतलाते हैं। हेयर कस्कु और प्रहलाद महाराज दोनों को एक जगह उपस्थित करके आप जरा विचार कीजिए। जब प्रहलाद महाराज के व्यवहारों से बिल्कुल तल आ गया है, हिरण्यकश्यपु उनके अनुरूप नहीं चल रहे थे, तो एकदम क्रोध में होकर अंतिम बार अपने हाथ से तलवार निकाल करके मारना चाहा। तब पूछता है, वहां भागवत का श्लोक है, सप्तम स्कंध के आठवें अध्याय का सातवां श्लोक, कहता है हिरण्यकश्यपु, क्रोधस्य जस्य कंपन्ते त्रयलोका सहेश्वरा तस्य मेव धितवन मूढ़ शासनम किम बलोत्यदात। अरे मूर्ख, तुम्हारी बुद्धि की तो हद हो गई। साधारण बुद्धि वाले लोग भी इस बात को जानते हैं और समझ सकते हैं, लेकिन अरे मूढ़, तुम इस बात को नहीं समझ पा रहे हो मैं कौन हूं। क्रोधस्य जस्य कंपन्ते त्रयलोका सहेश्वरा, जिनके क्रोध करने पर तीनों लोक और लोकपाल, तीनों लोक में रहने वाले जीव और उनके लोकेश्वर, लोकाधिपति, अध्यक्ष लोग, सभी लोग कांप उठते हैं, लेकिन तस्य वही मैं यहां सामने हूं। अभितवत मूढ़, तुम एकदम भयभीत नहीं हो, तुमको थोड़ा सा भी बुद्धि नहीं है कि किसके सामने तुम इस निर्भय। शासनम किम बलोत्यगा, किसके बल पर तुम इस तरह निर्भय हो, किसके बल पर। और इधर निर्मल चित वाले कहते हैं प्रहलाद महाराज, इनका चित एकदम स्वच्छ है, देख रहे हैं सब चीज यथार्थ। सब कहते न केवलम में भवतस्य राजन, केवल मैं ही नहीं सर्वई दलम बलिदम था परेशान परे वरी अमी स्थिर जंग माये ब्रह्मा दयोजन बसम प्रणीता। केवल मैं ही नहीं राजन, जितने बलवान हैं आप जैसे दुनिया में जो अपने को काबिल बनते हैं और उसी पावर हाउस उसी स्रोत से सब बल आया है जिसके बल पर मैं निर्भय हूं। न केवलम मैं भवतस्य राजन, हे राजन संबोधन कर रहे हैं, वास्तव में आप बहुत अच्छा लग रहे हैं, तीनों लोक आपसे कांप रहा है, अहंकार में भी आप अच्छे लग रहे हैं, मूर्खता में भी आप मूर्खता के बल पर अपने को त्रिलोकी का मालिक समझ रहे हैं, अविद्या से ग्रसित होकर भी आप बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो जिनके कृपा से जिनके बल से आप राजित हो रहे हैं, राजा बने हुए हैं, सर्वई बलम बलिनाम चा परेशान, जितने बलवान हैं उन बलवानों में जो भी बल है आप अथवा आपसे परे जो भी परे अवरे अमीश्वर जंग माजे इस संसार में अप्राकृत प्राकृत सब जगह ब्रह्मा दयोजन बसम प्रणीता, ब्रह्मा शिव आदि जिनके बस में होते हैं उनके बल पर। देखिए चित्त स्वच्छ है इसलिए दिख रहा है। स्वामीश्वरम काल क्रमोशम ओजा सह सत्व बलेन्द्रियात्मा सएव विश्व परमम सुशक्ति सृजत वक्त्यति गुण प्रेषम। वही सर्वश्रेष्ठ नियंता कंट्रोलर ईश्वर है और वही उपक्रम की विविध लीला है, ओज बल सत्व इंद्रिय बल ज्ञान सब कुछ उसी पावर हाउस से प्राप्त होता है सबको। जहिया सुरा भाव मिमम तमात्मन, अरे असुर अपने इस आसुरी भाव को छोड़ो, इस सिद्धांत को चित्त को साफ कर लो समझो, वही रक्षा करने वाले हैं। अब तो कुछ सुनकर और दुखी हो रहा था और क्रोध में भरता जा रहा था, तब कह रहा है यश तया मंद भाग्यक्षो मदन्यो जगदीश्वर, अरे मंद भाग अभागा तुम इतने दुर्भागी हो कि तुमको इतना कम सेंस है कि बात समझ नहीं आ रहा है कि मदन्यो जगदीश्वर मेरे अतिरिक्त भी कोई जगत का ईश्वर है जिसकी तू चर्चा कर रहे हो, तुम्हारा दुर्भाग्य है कि मुझ ईश्वर को नहीं समझ पा रहे हो। तुम मत अन्य जगदीश्वर मेरे अतिरिक्त भी इस जगत का कोई ईश्वर है, क्वातो यदि सर्वत्र वह ईश्वर कहां है, तो प्रहलाद महाराज कहते हैं सर्वत्र सब जगह यहां भी, हां सर्वत्र यहां संकेत करते हैं प्रहलाद महाराज सब जगह है वो ईश्वर, हम में आप में ये जो तलवार दिखा रहा है उसमें भी, हमने तुमने खड़ग खंभ में घट घट जाते हैं राम सब जगह है, सब जगह रमन करते हैं। क्या तो है यदि सर्वत्र कस्मात स्तंभ न दिखते, यदि वह सब जगह है तो स्तंभ में भी नहीं दिख रहा। तो प्रहलाद महाराज मुस्कुरा दिए, क्योंकि तुम्हारा चश्मा गंदा है दिख पत्थर गंदा है तो दिख नहीं रहे, हमको तो दिख रहे हैं खंभे में भी है, कहते हाँ प्रहलाद महाराज देख रहे हैं कि खंभा में है, और एक दूषित चित वाला कह रहा है कहां है दिख नहीं रहे, तो है दिख नहीं रहे हैं आपकी आंख कमजोरी है। अब नहीं दिख रहा है कि इसका मतलब यह नहीं कि नहीं है, उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता तो इसका मतलब सूर्य नहीं है। अब क्रोधित होकर उसी खंभे के ऊपर हुआ है, इतना जोर से मारा भगवान प्रकट हो गए, अब सोचे कि चलो इसको भी दिखा दें, प्रकट हो गए और देखने लगा रहे ऐसा अद्भुत चीज को देखा ही नहीं। तो इस प्रकार एक स्वच्छ चित्त दूषित चित्त का उदाहरण आप देख सकते हैं, एक स्वच्छ चित्त वाले प्रहलाद महाराज सब जगह भगवान को देख रहे हैं। तो इस तरह अविद्या रूपी मन से मलिन चित्त वाले स्वरूप को नहीं पहचान पाते, तो इसका उपाय महाप्रभु कहते हैं कि इस चित्त की गंदगी दूर किया जा सकता है कृष्ण नाम संकीर्तन से। जीव स्वरूप से शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव का है, इस तरह बंधन में नहीं है, उसका चित्त भी उसी तरह का होना चाहिए। जब जीव अप्राकृत चिन्मय तत्व है तो उसका चित्त भी वैसे ही होना चाहिए, लेकिन इस चित्त में विविध प्रकार की गंदगी आ कहां से गई जो चित्त को ही ढक दिया। प्रश्न है ना, चिन्मय जीव जड़ माया द्वारा क्यों ढक दिया गया, कैसे आवृत हो गया, तो यह गंदगी कहीं दूसरे जगह से नहीं आया है, कृष्ण बहिर्मुख जीव ही अपने गंदगी का निर्माण किया है, वह कृष्ण से विमुख होकर गंदगी का निर्माण करके चित्त को गंदा कर दिया। जैसे सूर्य जल को शोषित करते हैं, शोषण करते हैं, सरोवर से, समुद्र से, नदियों से जल को खींचते हैं और उस जल को वाष्प बनाकर वही बादल का निर्माण करके खुद सूर्य ही ढक गए। देखिए, नहीं दिख रहे हैं। इनको ढकने में दूसरा कोई कारण है? अभी हम आपने इस नग्न आंख से सूर्य को नहीं देख पा रहे हैं। अभी प्रगत उदाहरण देखिए ना, आकाश में सूर्य नहीं दिख रहे हैं। तो इस बादल का निर्माण किसने किया? सूर्य ने बादल का निर्माण करके और ढक गए। उसी प्रकार जीव अपने कर्मों से कृष्ण बहिर्मुखता वश विविध कर्म करता है और उन कर्मों के कारण अपने चित्त को दूषित कर दिया है, भोगों की लालसा भर गई है और इस जड़ माया द्वारा आवृत हो गया है। किंतु जो मायाबद्ध जीव है, अनादि काल से कृष्ण को भूल करके माया के आवेश में कृष्णेतर विषयों की चाह से अपने चित्त को दूषित कर दिया है। माया से अभिनिविष्ट जीव विविध प्रकार के उपाधि धारण कर दिया है। हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम भारतीय हैं, हम अमेरिकन हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं। एक उपाधि रहता तो चलो किसी तरह हटा कर फेंक भी दिया जाता। हम पति हैं, हम बाप हैं, क्या क्या बन गया है। और सारे ऑर्डर चीप पर ही हैं, ऊपर से कहां ऑर्डर दिखाई देता है। अगर चाहे तो इस कुर्ता को निकाल सकते हैं, यहां तो कोई आवरण नहीं है। इतना आवरण घेरा हुआ है, क्रिकेट मैच में हमारा भारत जीतना चाहिए। छह छह सात सात घंटा मैच देखते हैं। इस अज्ञान का कोई सीमा है? भजन करने के लिए टाइम नहीं, हम लोगों को समय नहीं मिलता कैसे और कुछ कर सके। उन लोगों को मूल मूर्खों को पता से कहां से टाइम मिल जाता है। ताश खेलते रहते हैं, गांव में बैठे हुए हैं, बिना मतलब के कामों में लगे हैं। चित्त दूषित हो गया है, माइक मलिनता से भरा हुआ है। यह माइक मलिनता दूर होने से चित्त पर फिर से स्वरूप का दर्शन हो सकता है। चित्त की इस मलिनता को दूर करने का उपाय है श्री कृष्ण संकीर्तन। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। निर्वच्छिन्न भाव से बार बार कृष्ण का संकीर्तन करते रहने से चित्त का मलिनता दूर हो जाएगा। इसी प्रकार इसको पोछते रहना चाहिए कृष्ण नाम संकीर्तन से। और दूसरा है भाव महादावान निर्वाणम, दो चीज का नाश करता है, चित्त के गंदगी को नाश करता है और भाव दवाग्नि का भी नाश करता है। भाव दवाग्नि, तो भाव किसको कहते हैं? जीव का पुनः पुनः इस संसार में आने को भव कहते हैं, जो अत्यंत दुखदायी है। संसार वास्तव में दवानल है। घर गृहस्थी के पच्चर में पड़े हुए गृहस्थ जब अपने दुखों का वर्णन करते हैं तो कभी कभी ऐसा कहते हैं कि इस समय मैं घर से परिवार से दूर हो गया हूँ, कोई फोन संपर्क नहीं, कुछ नहीं, सत्संग में हूँ, धाम में हूँ, आप लोगों के साथ में हूँ, तो बड़ा शीतलता महसूस हो रहा है। लेकिन जब ही यह याद आता है कि अब ये टाइम खत्म होने वाला है, ब्रजमंडल परिक्रमा, नदी परिक्रमा, ये सब पूरा हो गया, सप्ताह कथा सब पूरी हो गई, अब जाना पड़ेगा, तो टिकट का डेट याद आते ही आँच आने लगता है। उधर का आँच आता है कि ट्रेन पकड़ते हैं और जाते हैं, जैसे अपना निकट स्टेशन आता है तब ऑफिस, घर, काम धंधा, स्त्री बच्चे सब याद आते हैं और उन लोगों का याद सुखद नहीं होता है, वो जलनशील होता है। इतना 10 दिनों में क्या क्या बिगड़ा है इसका याद आता है, क्या क्या बिगड़ गया, क्या हो रहा है, जलन होने लगता है। जो जो निकट आते हैं तय तय आँच आने लगती है, ये जलनशील है, जलता है। और जब आ जाते हैं, तुमको तो कोई काम नहीं, तो घूमते रहते हो, यहाँ क्या हो रहा है कुछ पता है? ये बच्चे बीमार हो गए, इनको हॉस्पिटल जाना पड़ा, इनको स्कूल छोड़ना पड़ता है, दुनिया भर की बात स्त्री सुनाती है। अब निकट आए तो ज्यादा आना चाहने लगा, तो फिर मन में चलता है, अरे मैं भला बहुत अच्छा था उधर था, यही सुनने के लिए आया। ठीक है, शांत रहो, सब चीज ठीक हो जाएगा। अपना समझाने का कोशिश, हाँ तुम्हारा भगवान घर बैठे सब कुछ पहुंचा देगा, फिर नहीं कर देता है। इस तरह की बात कभी बेटा बोलता है, कभी बेटी बोलती है, कभी स्त्री, कभी दोस्त मित्र, सब जगह कुछ सुनाते हैं। तो ये आँच आ रहा है, आता है, इस तवानल है, जलन है। जब हम संसार को स्वीकार करते हैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, स्त्री स्वीकार करते, विवाह करते हैं भोग की इच्छा से, तो निश्चित रूप से दुख होता है। जब हम योग के लिए कोई सहयोगनी स्वीकार करते हैं, दोनों का केंद्र भगवान होते हैं, तब दिक्कत नहीं होता है। तब तो स्वामी जब भगवान है तब सेवा को कोई दिक्कत नहीं, और जब स्वामी बनकर भोगने की चेष्टा करते हैं तब तो चंद्रमुखी बात में सूर्यमुखी हो जाएगी। अभी शीतलता आ रहा है उसके मुख दर्शन से।